भाग एक, कटघरे की दीवारें, जब हर जवाब एक नया जख्म दे। रात 4:05, हवेली का ऊपरी कमरा। रैना दरवाजे के पास खड़ी थी और अखिल खिड़की के पास। दोनों के बीच इतनी दूरी नहीं थी कि एक दूसरे की सांसें सुनी ना जा सकें, और इतनी नज़दीकी भी नहीं कि वो सांसें महसूस हो सकें। कमरा अब शोर से नहीं, चुप्पियों के जहर से भर चुका था। अखिल ने दीवार से पीठ टिकाकर जेब से सिगरेट निकाली। सिगरेट यहां मत पीजिए, रैना ने तेज आवाज में कहा। तुम्हें अब मेरे पीने से भी दिक्कत है? वैसे तुम तो उस विवेक के साथ ऊपर आराम से आई थीं, तो वहां अगर कुछ और होता उससे दिक्कत नहीं होती? रैना का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक ऐसी चिंगारी थी जो सीधे अखिल की तरफ उड़ चली। ओह प्लीज, तुम्हें लगता है मैं विवेक जैसी गंदी सोच वाले इंसान के साथ ऊपर खुद आई थी? अखिल ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। तुम्हारी चाल बताती है कि कौन किसके साथ कहाँ जा रहा है, और हाँ, वो ड्रिंक जो तुमने हाथ में लिया था वो तो शायद आत्मा की प्यास बुझाने के लिए नहीं था। कमाल है, रैना ने ताली बजाई। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक औरत के हर कदम पर शक करने की तुम्हारी आदत आज भी गई नहीं। तुम खुद वहां बार के पास खड़े होकर लड़कियों के साथ हंस रहे थे और मेरे ऊपर उंगली। हाँ, हंस रहा था, अखिल अब सीधा खड़ा हो गया, क्योंकि कम से कम वो लड़कियां बनावटी नहीं थी। तुम तो जैसे पार्टी में आई ही थी किसी नाटक की स्क्रिप्ट पढ़कर, अकेली दुखी पर मर्यादा की देवी वाला रोल निभाने। रैना की सांसें तेज हो गई। और तुम क्या थे, राजा विक्रमादित्य? कम से कम मैं किसी के कंधे पर लुढ़कने तो नहीं गया ऊपर, वो सिर्फ मेरी तबीयत खराब थी। हाँ, और विवेक तुम्हारा डॉक्टर है? अखिल की मुस्कुराहट में जहर घुला था। रैना ने गुस्से में टेबल पर रखे ग्लास को धक्का दे दिया। वो जोर से गिरा, शराब की गंध कमरे में फैल गई। मैं नीचे जा रही हूं, उसने कहा। तो जा क्यों नहीं रही, अखिल पीछे से बोला। रैना दरवाजे की तरफ बढ़ी लेकिन फिर रुक गई, क्योंकि दरवाजा तुमने बंद किया था और चाबी अब भी तुम्हारे पास है। अखिल ने जेब से चाबी निकाली, उसे उछालते हुए बोला। ओ हाँ, तुम्हें तो अब आदत है ताले खुलवाने की, कभी अदालत में खुलवाए कभी कमरे में। रैना एकदम पलटी, उसकी आंखें अब एक जलता हुआ लावा थीं। तुम्हारी सोच हर बार यही गिरा हुआ मजाक बनकर सामने आती है अखिल, और तुम सोचते हो कि इससे मुझे चोट लगेगी? हाँ, लगी थी पहले, जब मैं समझती थी कि तुम थोड़े बहुत इंसान हो। कमाल की बात है, अखिल ने कहा, तुमने पहले कभी ये हिम्मत नहीं दिखाई थी। क्योंकि तब मैं तुम्हारी जैसी नहीं थी, रैना चिल्लाई, तुम्हारी जैसी घटिया नीची सोच रखने वाली नहीं थी। और अब बन गई हो, अखिल ने ठहाका मारा। नहीं, रैना की आवाज थर्राई, अब मैं तुम्हारे बराबर नहीं बनना चाहती, लेकिन कम से कम अब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हो सकती हूँ, तुम्हारी तरह बातों से काट सकती हूँ। कमरे में कुछ पल खामोशी रही। अखिल अब धीरे धीरे उसकी तरफ आया, करीब और फिर थोड़ा और। काट तो सकती हो, लेकिन क्या संभाल सकती हो, उसने पूछा। रैना पीछे नहीं हटी, वो वहीं खड़ी रही। तुम्हें लगता है तुम अब भी मुझे डरा सकते हो, उसकी आवाज नीची लेकिन सख्त थी। डराना नहीं चाहता, अखिल ने कहा, तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाना चाहता हूं। और तुम कौन हो ये दिखाने वाला, जो मर्द औरत को उसके कपड़ों से जज करता है, उसकी थकान को उसके चरित्र से जोड़ता है? कम से कम मैं वो नहीं जो लोगों की नजरों में खुद को देवता दिखाए और अकेले में ड्रामे करे। क्योंकि मैं कम से कम किसी को धोखा नहीं देती, और मैं किसी पर एहसान नहीं करता, तुमने कभी किया भी नहीं, रैना चीख पड़ी। फिर एक पल को दोनों चुप, सांसें तेज, चेहरों पर पसीना, आंखों में नफरत। फिर रैना फर्श पर बैठ गई, नहीं हार कर नहीं, बल्कि जैसे कोई पुराना वजन उसके सीने पर एकदम से टूट कर गिर गया हो। तुम्हारे साथ रहना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, अखिल वहीं खड़ा रहा। तुम्हारे साथ शादी करना मेरी सबसे बड़ी सजा थी, उसने जवाब दिया। फिर उसने चाबी मेज पर रख दी। लो, दरवाजा खोल लो, तुम फ्री हो। वैसे भी तुम हमेशा यही चाहती थी ना, आजादी, सम्मान, अपनी जिंदगी, अब जाओ जी लो। रैना ने चाबी उठाई, दरवाजे की तरफ बढ़ी, फिर कुछ पल को रुकी। मैं चली जाऊंगी अखिल, लेकिन याद रखना, जो इज्जत तुम दूसरों से छीनते हो वो तुम्हारी खुद की कभी रही ही नहीं। दरवाजा खुला, हल्की हवा अंदर आई और दोनों के बीच की तलखियों को एक बार फिर हिला गई।